हरि ओम हरि ओम हरि ओम गकार सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारकः उकारो विष्णु अव्यक्ताः त्रितयात्मः गुरु पराः। गुरु शब्द का गकार सिद्धि देने वाला है, रकार पापहारक है और उकार अव्यक्त विष्णु, ये तीनों मिलकर गुरु शब्द बनता है। गुरु वह है जो श्रेष्ठ है, जो लघु को गुरु कर दे, और इन तीनों से परे जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है उसकी प्राप्ति करा दे, वह है गुरु पूर्णिमा। और सब पूर्णिमा है लेकिन यह है गुरु पूर्णिमा। ब्राह्मण श्रावणी पूर्णिमा, क्षत्रिय दशहरा, वैश्य दीपावली और आम आदमी होली, लेकिन ये गुरु पूनम तो सभी के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वैश्य शूद्र क्षत्रियों के लिए, देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए और भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए भी गुरु पूनम मनाई जाती। भगवान राम भी गुरु पूनम मनाते हैं, गुरु के द्वार जाते हैं, भगवान कृष्ण भी गुरु जी के यहाँ जाते हैं। ब्राह्मणों की विशेष नारियली पूनम जनेऊ बदलने की विशेषता, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो ब्राह्मण भूदेव के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है, छोटी जाति वालों के लिए है, देवताओं के लिए भी है, दैत्यों के लिए भी है और देवों के देव भगवान के लिए भी गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और भगवान वेद व्यास, वाह, जन्मते ही कुछ समय में मुझे एकांत में जाना है और अपने आत्मवैभव को पाना है और लोगों को मनुष्य जीवन की महानता का फल दिलाने के लिए माँ मुझे जाने की आज्ञा दो। माँ ने कहा पुत्र प्राप्ति होती है माँ बाप की सेवा के लिए, और तुम अभी से इतने नन्हे और चले जाओगे तो कभी मुझे आवश्यकता पड़े तो पुत्र तुम्हारी सेवा मैं कैसे ले पाऊँगी। मैया तुम बहुत कठिनाई में होगी और मुझे याद करोगी ना, मैं वचन देता हूँ मैं आ जाऊँगा। दो भाई संसारी ऐश आराम में दम टीबी आदि हो गई और चले गए, भाभियाँ विधवा हो गई। माँ ने याद किया कि अब कुल परंपरा राज्य की गद्दी कौन संभालेगा। कृष्ण द्वैपायन नाम था, श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण नाम पड़ा और द्वीप में जन्मे थे तो द्वैपायन। और बड़ा इनका प्रागित्य भी अद्भुत था। याद किया माँ ने और ये महापुरुष आए। माँ ने कहा तुम्हारी भाभियाँ विधवा है, तुम्हारे भाई चल बसे हैं, कैसे भी करके इन्हें संतान प्रदान करो। भाभियाँ स्नान करके पवित्र होकर मेरे कमरे से यूँ गुजरेगी, मेरे तरफ देखेगी, मैं दृष्टिपात से उन्हें संतान दे दूँगा। एक भाभी गुजरी लेकिन शर्म के मारे पीली हो गई तो पांडु पैदा हुए और उससे पांच पांडवों की परंपरा चली। दूसरे ने अपनी आँखें हाथ से बंद कर दी शर्म के मारे तो अंध धृतराष्ट्र पैदा हुए। और फिर दासी को भेजा गया तो उसने आदर से देखा तो दासी से विदुर जी जैसी महान हस्ती पैदा हुई। वेद एक था और उसके चार विभाग किए तो नाम पड़ा वेद व्यास। विश्व का आरंभिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र, अभी भी कोई विद्वान ब्राह्मण, मैं आचार्य की परीक्षा देने गया था, आचार्य बराबर MA, सीधी आचार्य की परीक्षा देने गया था, उसमें प्रस्थान त्रय ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता। तो विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ आरंभ हुआ गुरु पूर्णिमा को, और विश्व का 1,00,000 श्लोकों वाला महान महाभारत पंचम वेद पूर्ण हुआ गुरु पूर्णिमा को। देवताओं ने उस ग्रंथों की और व्यास जी की महानता की प्रसादी सबको मिले, इसलिए व्यास जी को प्रार्थना किया कि शिव जी का सोमवार है, हनुमान जी का शनिवार और मंगलवार है, सब देवों का अपना अपना दिन है, लेकिन गुरुदेव नहीं होंगे तो देवताओं के विषय में बताएगा कौन। गुरु का पूजन सर्वोपरि है, सभी देवों का पूजन हो जाए, गुरु पूजन रह गया तो सब अधूरा हो जाता है, और गुरु पूजन हो गया तो सब देवों का पूजन माना जाता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो भगवान वेद व्यास जी ने गुरुवार गुरु पूजन का दिवस, और वर्ष में जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी आदि भगवानों के प्रागट्य दिवस, ऐसे इस महान विभूति का प्रागट्य दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा भगवान वेदव्यास जी के सम्मान में गुरु पूर्णिमा उत्सव हुआ शुरू। लेकिन ये उत्सव केवल भारत में नहीं, अटलांटिक सभ्यता में, यूरोप, रोम आदि कई देशों में इसकी परंपरा चली थी। इस व्यास पूर्णिमा का अपने आप में बड़ा महत्व, बड़ा प्रभाव है, और भगवान व्यास जी ने इतनी उदारता का परिचय दिया कि जो भी इस वैदिक संस्कृति का प्रचार करेंगे, वैदिक ज्ञान से समाज को उन्नत करेंगे, वे इस पूर्णिमा के दिन व्यास की नाई पूजे जाएंगे। तो हम गुरु की पूजा करते मतलब व्यास की पूजा करते, और व्यास भगवान चिरंजीवी है, शंकराचार्य के आगे प्रकट हो गए थे, और भी कई उनके प्रागट्य के शास्त्रों में और संतों में। व्यास जी तो इतने अद्भुत सामर्थ्य संपन्न है कि महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, धृतराष्ट्र बहुत दुखी होने लगे, तो व्यास जी आए, उनको सांत्वना दी। तो धृतराष्ट्र ने कहा, देखो और तो ठीक, लेकिन मुझ अंधे पिता के सौ पुत्र चले गए, आखिरी में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कुछ आप करो। बोले ठीक है, मैं फलानी तिथि को आऊँगा, अभी तो तुम सप्त सरोवर पे हो, गंगा जी पास में है, मैं उन सब को जो जो योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनको बुलाऊँगा, और उनकी पत्नियों को बुला लो, और वो वार्तालाप करेंगे, पूरी रात आपस में बातचीत करेंगे। महर्षि नौमस से सीखी हुई विद्या, अनुस्मृति विद्या से युधिष्ठिर ने बताया कि 1,66,20,000 लोग मरे हैं, 2,40,000 लोग, 165 लापता हैं, और प्रसन्नतापूर्वक देह त्यागने वाले इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं, कोई स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं, और कोई वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये गिनती जब बताने लगे तो आश्चर्य को आश्चर्य हो कि ये विद्या तुमने कैसे जानी। बोले लोमस ऋषि ने मुझे प्रतिस्मृति विद्या बताई थी, लेकिन उस विद्या से भी अलौकिक विद्या के धनी थे भगवान वेदव्यास, जो मर गए थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे, कर्ण और दुर्योधन और उनके भाई और दूसरे भी योद्धा, उनका आह्वान किया, और जैसे कुंभ मेले में गंगा जी से साधु लोग शाही स्नान करते हैं, बाहर निकलते गंगा जल में खलबली पैदा होती, ऐसे खलबली पैदा होते रात्रि के समय ये योद्धा गंगा जी से बाहर आए, जो वस्त्र पहनकर युद्ध में गए थे और देह त्यागा था वही वस्त्र आभूषण, लेकिन कर्ण कुंडल भिन्न थे स्वर्गीय, और चित्त बदला हुआ था, प्रतिशोध की आग से तपते हुए युद्ध में गए थे, लेकिन स्वर्ग से आए थे तो बड़ी शीतलता थी और कर्ण कुंडल भिन्न थे। सभी ने कुंतामा का, धृतराष्ट्र का आदि का दर्शन आदि किया और उन अपनी पत्नियों से वार्तालाप आदि किया। जब प्रभात होने को हुई तो व्यास जी ने कहा कि जो पत्नियां पति लोग को पाना चाहती हैं मैं उनको भी भेज सकता हूं, अब समय हुआ है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये स्वर्ग के वासी हैं, इन्हें स्वर्ग भेजना है, जो पत्नियां जाना चाहे वो भी जाएं। जैसे श्री राम जी अयोध्यावासियों के प्रति विशेष कृपालु हुए कि हम अपने धाम में जा रहे हैं, जिनको चलना है चलो, सरजू में प्रवेश करो, मेरे धाम में पहुंचो, ऐसे ही दानवीर कर्ण और उनके सहयोगी साथी गांधारी आदि से मिले, कुंथा आदि से मिले और बहुओं को सम्मति मिली, वो वीर भी गए और उनकी पत्नियां भी वीर गति को पतियों के पीछे गई। कैसी कैसी हस्तियां हमारे देश में हो गई, जो भारत से सीख के जाते और वहाँ भगवान होके पूजे जाते और फिर क्रॉस पे चढ़ जाते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारा धर्म बड़ा, मान लो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सर्वोपरि धर्म है तो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, और धर्म किसी न किसी ईश्वर के बेटे ने शुरू अपने को ईश्वर का बेटा घोषित किया, किसी ने अपने को पैगंबर घोषित किया, लेकिन व्यास जी ने तो वो ज्ञान बताया कि सनातन संस्कृति का अनादि अनंत। जैसे सूरज किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, समुद्र किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, धरती किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, ऐसे सनातन धर्म किसी ऋषि की बनावट नहीं है। भगवान राम ने भी सनातन धर्म नहीं बनाया, भगवान कृष्ण ने भी इसमें हिंदू धर्म नहीं बनाया, लेकिन हिंदू धर्म की महानता में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं और हिंदू धर्म की महानता से वैदिक परंपरा से खीर का कटोरा अग्नि देवता ले आए और राम जी बाद में प्रकट हुए। तो राम जी से हिंदू धर्म की अथवा सनातन धर्म की पहचान नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की महानता से राम जी का प्रागट्य है, सनातन धर्म की महानता से श्री कृष्ण का प्रागट्य है और भी महापुरुषों का प्रागट्य है। तो ये सनातन धर्म में जिनका जन्म हुआ है मैं तो उनको खूब प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और मजहब में जो पैदा होते हैं, इस्लाम में कोई पैदा होता है तो उसकी सुन्नत करते हैं मुल्ला मौलवी आदि, ईसाई धर्म में कोई पैदा होता है तो पादरी तो बसमा आदि करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कोई पैदा होता है तो कोई मनुष्य उसको हिंदू नहीं बनाता है, वो तो जन्मजात हिंदू है, मनुष्य मेकर नहीं है हिंदू, हिंदू मनुष्य मेकर नहीं है, हिंदू सनातन है, गॉड मेकर भी नहीं है, भगवान भी उसे हिंदू नहीं बनाते, हिंदू हिंदू ही है। पैसा सौभाग्य, मुझे हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्रों का मुझे बहुत फायदा मिला है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी हिंदू धर्म के मंत्रों का फायदा मिले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 राम 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 हरि ओम 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 सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी को प्रणाम। हरि ओम 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 सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी को प्रणाम। हरि ओम 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 पारस सुत श्री व्यास जी को प्रणाम। हरि ओम 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 पाराशर सुत श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम है। बादरायण हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 व्यास जी ओम 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 नारद जी ओम 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 शिव जी ओम 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 वशिष्ठ जी ओम 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 हरि ओम 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 अंतरात्म देव ओम 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 हरि भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम
कली में हरि को नाम
निशदिन साधक जो जपे
निशदिन साधक जो जपे
सफल होवई सब काम
सफल होवई सब काम
हरि ओ सबसे प्राचीन सबसे श्रेष्ठ सबसे महान ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद पाठ करने से आदमी पुण्यात्मा और प्रभाव संपन्न होता है, लेकिन वेद पाठ के प्रारंभ में हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि वेद पाठ के पहले हरि का नाम और वेद पाठ पूरा हो हरि ओम शांति शांति नित्य उत्सव भवे ते शाम नित्य उत्सव भवे ते शाम नित्य श्री नित्य मंगलम
नित्य श्री नित्य मंगलम
ये शाम हृदयस्थ भगवान
ये शाम हृदयस्थ भगवान
मंगलाय तनो हरि
मंगलाय तनो हरि।
उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है, नित्य उत्सव भवे ते शाम नित्य श्री संपदा आगे पीछे नित्य श्री नित्य मंगलम ये शाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनु हरि। दो चीज है मूल में, एक तो पुरुष है, दूसरी प्रकृति है। प्रकृति का हो माया का हो, माया भी उस देव की है और उस देव ने अपनी एड्रेस बताते हुए बड़ी कृपा की, देवी एषा गुणमयी देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मम माया ये माम प्रपद्यन्ते ये माम प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते मायां मेतां तरन्ति। मुझ देव की ये माया है और इसको तरना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण आता है मुझ पर नजरिया रखता है उसके लिए तरना आसान हो जाता है। जैसे मछुआरा चारों तरफ जाल डालता है, बड़ी मछली छोटी मछली चालाक मछली बुद्धू मछली जाल में तो आ जाती है, लेकिन जो मछली मछुआ के पैरों के इर्द गिर्द घूमती है वहाँ मछुआ की जाल काम ही नहीं करती। ऐसे ही जो अंतर्यामी भगवान है, भगवान चार शब्द है, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है माँ के शरीर का बेटे के शरीर का, भ ग जिसकी सत्ता से गमनागमन कर सकते हो, व जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न सब मिट जाए फिर भी जो तुम्हारा जिसके साथ संबंध नहीं मिटता वो अंतर्यामी सर्वव्यापक भगवान है। उस भगवान की शरण आना, इस माया को जैसे गोपद गाय के खुर को पार करना क्या कठिन है। ऐसे तो संसार सागर महागंभीर, बड़े बड़े तिशमार खान इसमें डूब जाते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण आता है उसके लिए संसार सागर गोपद की नाई नन्ना हो जाता है। गाय के खुर को लांगना क्या है, इतना सरल हो जाता है। और केवल शास्त्रों ने ये कह दिया है और आप मान लो, ऐसा मजहबी वाद सनातन धर्म नहीं है, आप अनुभव कर लो। 7 दिन के अंदर परीक्षत को साक्षात्कार हो गया है। 7 दिन के लिए, 7 दिन में एक क्लास कोई पार नहीं कर सकता। पहली वाला दूसरे में नहीं जा सकता 7 दिन में, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार 7 दिन में। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते साक्षात्कार वहाँ हो गया ना, गोपद की नाई 2 मुहूर्त में साक्षात्कार। और साक्षात्कार मतलब भगवान के दर्शन कई बार हो जाए, सभी भगवानों के दर्शन हो जाए, शिव भगवान के, विष्णु भगवान के, गणपति भगवान के, ब्रह्मा भगवान के, फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार हो गया तो सभी की पूर्णता हो गई, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। और वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य मात्र अधिकारी है। न जाने कैसा भूत घुस का क्या करे, हम तो गृहस्थी है, हम तो अयोग्य है। अपने को गृहस्थी और अयोग्य मानकर सारी योग्यताओं का गला घोंट दिया। जैसे कोई मोहन भाई बोले कि मुझे मोहन भाई से मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मोहन भाई से मिलना मेरी योग्यता नहीं है, तो भ्रामक संस्कार है उसके। ऐसे तुम अपने मैं से मिलना तुम अयोग्य अपने को मानते हो। मैं एक सवाल पूछता हूँ इन ब्राह्मणों को और भक्तों को, किसी के घर में बाप दादों की परंपरा का पारस है, लेकिन वो जानते नहीं है और पारस को सील बट्टा समझकर चटनी लहसुन मिर्च प्याज घोटते सील बट्टे पे, जो पारस को सील बट्टा समझकर रगड़ते रहते हैं, उस कुटुंब का व्यक्ति पारस खोजने जाए तो क्या दुनिया में उसको पारस मिलेगा? कुछ तो बोलो, हाँ ना। जो अपने घर के पारस को सिलबट्टा समझकर रगड़ रहा है, उसको पता ही नहीं कि पारस है, तो क्या दुनिया में भटक भटक के पत्थरों में पहाड़ों में पारस खोज के ला सकता है क्या? वो नहीं ला सकता। अरे घर के पारस की पहचान नहीं तो बाहर का पारस उसे मिलेगा तो पहचानेगा कैसे? ऐसी पारस का पारस अपना अंतरात्म देव है, उसकी पहचान नहीं किया तो तीर्थों में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, थोड़ा बहुत पुण्य मुण्य हुआ, बाकी सब ऐसे का ऐसा धरा रह जाता। इसलिए कबीर जी ने बड़ी भारी कृपा की, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कबीर जी किसी निमित्त वृंदावन में गए और बांके बिहारी के मंदिर के तरफ कोई साधक मिल गया, रीवा जिला का था, देखा कि ये तो पात्र है अपने कन्हैया को पहचानने के लिए। बोले कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बांके बिहारी का दर्शन करने, मैं हर साल आता हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ, रीवा जिला का हूँ, फलाना गांव हमारा। बोले हर साल भगवान का दर्शन करना पड़ता है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मेरा एक बार दर्शन आए हो जाए तो जीव को अपने स्वरूप का पता चल जाता है। तो एक बार तुमने गंगा जी के जल का स्वाद ले लिया तो गंगा जी के जल का ज्ञान हो गया, तो फिर गंगा जी भी वो ज्ञान नहीं छीन सकती। और गंगा जी तो किसी जगह पर है, ईश्वर तो सर्वत्र है। तो हर साल ईश्वर का दर्शन करना पड़ता है, उसका मतलब तुमने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, ईश्वर की मूर्ति का दर्शन किया होगा। टकटकी लगा के देखी कि महापुरुष ने तो मेरा नासमझी का पर्दा खसेट लिया। कबीर जी को एक टक देखा, और गुरु को एक टक देखने से जो शांति मिलती है और गुरु की नज़रों से जो प्रभाव बरसता है, वो मूर्खों को क्या पता। आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, सिर पे हाथ रखो, अरे मूर्ख चंद्रमा को बोलता है चांदनी दो, चांदनी दो। गंगा जी को बोलता है पानी दो, पानी दो। बरस रहा है। आशीर्वाद मांगना है तो कन्या मन्या कुर, तुम मेरे चेले में तुम्हारा गुर, दक्षिणा धर लो, स्पेशल आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। जुग जुग जियो, जुग जुग खुद तुम मुल्ला तुम मर जाएगा, ये जुग जुग कैसे जिएगा। अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, डाकिनी बांधूं, साकिनी बांधूं, ये दुआ बिस्त मिलाए। ये सब मुलाम मौलवी पंडित ब्राह्मणों के पास आशीर्वाद मांगो तो चलता है। आत्मा परमात्मा से जो एकाकार हुए उन महापुरुषों की नज़रों से आशीर्वाद बरसता रहता है। उस आशीर्वाद को धक्का ना मारो, वापस ना करो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। तो अभी क्या हो रहा है? चंद्रमा को बोले चांदनी दो, चांदनी दो, तो चांदनी का आनंद लेने बुद्धू। सूरज का प्रकाश, सूरज नारायण प्रकाश दो, सूरज नारायण प्रकाश दो। तो अभी क्या हो रहा है? गंगा जी पानी दो, गंगा जी जल दो। अरे अभी क्या बह रहा है? तो जो व्यास पद को पाए हुए ऐसे महापुरुष को अनजाने लोग भले ही सामान्य पंडा या मुल्ला मौलवी की नाई आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, सिर खपाए, लेकिन सच्चा साधक महापुरुष का सिर नहीं खपाता। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। नज़रों से वो निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी की नज़रों में आ जाते हैं। हरि ओम नारायण हरि। प्रभु जी तो व्यास जी ऐसे थे, मेरे लीलाशाह प्रभु जी ऐसे थे, कबीर जी भी ऐसे थे। धर्मदास ने आशीर्वाद मांगा नहीं, लेकिन धर्मदास को बाकी कुछ लेना भी नहीं रहा। जाते जाते कबीर जी ने कहा मेरा नाम कबीर है, कभी वृंदावन ये कभी काशी आओ तो मिल लेना। धर्मदास को हुआ कि ये पुरुष ने मेरे ऊपर नज़र डाली, मुझे इतनी शांति मिली, लगता कि मैं इनके पीछे पीछे जाऊं। लेकिन रीवा डिस्ट्रिक्ट में, जिले में मेरा इतना बड़ा पसारा है, इतने खेत कलियां, दुकानदारी, ये वो गहने सोने, आए माया, भगवान तो अपनी शरण ले ले। आत्मज्ञानी संत के आगे बैठ खड़े होके जो संकल्प करते हैं वो जल्दी फलता है। 6 महीने के अंदर धर्मदास पहुंच गए वहाँ, क्योंकि मन लगे ही नहीं बाहर की दुनियादारी में या पूजा में, ईश्वर का दर्शन और अपना आत्मा है ईश्वर। गए और देखा कबीर जी के तरफ। कबीर जी ने कहा मैंने तो तुमको वहीं पहचान लिया था, अब कुहू को कुहू का काहे निहारो धर्मदास, यूं यूं देख रहे हो, बहुत दिन के बाद आए हो, जरा सत्संग सुनाया। धर्मदास ने आज्ञा ली कि अब मुझे आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करनी है इधर ही। बोले फिर सब जाओ, सब दे आओ। बोले जब छोड़ना ही है तो उधर जाके क्या छोड़ना, यहीं बैठ बैठ के छोड़ देता हूँ। पत्र लिखा कि जो की संपत्ति रुपया पैसा है वो ऐसा ऐसा आपस में बांट लेना, मुझे तो महाटंक साल मिल गई है, आत्मा परमात्मा की अशर्फियाँ अशर्फियाँ मिल गई, सतगुरु मिल गए। सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। भरम था कि मैं धर्मदास हूँ, भरम था कि मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, विभू हूँ, व्याप्त हूँ। जन्म और मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप मेरा कर्म नहीं है। जन्म मृत्यु शरीर का होता है, पुण्य पाप मन का होता है, दुख सुख मन को होता है। मूर्ख लोग मन के दुख को अपने में डाल के दुखी हो जाते हैं, मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, परेशान हूँ। ये परेशानी बढ़ाने वाले की बेवकूफ़ी है। दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहता है जब संसार के सुखों से वो दुख को दबाना चाहता है या भगाना चाहता है, फिर से दुख आएंगे। दुखी आदमी को दुख मिटाना हो तो दुख हरी, हरी की प्रसादी समझ के दुख का उपभोग न करे, उपयोग कर ले। ऐसे ही सुख का उपभोग न करे, उपयोग कर ले। सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, दोनों को जानने वाला परमात्मा अपना प्रकट हो जाएगा ज्ञान। श्री कृष्ण ने बहुत कृपा करके गीता में अपने आप के अनुभव को खोल दिया। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मता। सुख आ जाए तो उसमें फिसलता नहीं, दुख आए तो उसमें डूबता नहीं। ये आया है तो जाएगा, दुख आता है फिर चला जाता है सुख दे जाता है, सुख आता है चला जाता है दुख दे जाता है। ये दोनों लोफर समय बर्बाद करते हैं, दुख भी समय खराब करता है सुख भी समय खराब करता है। लेकिन सावधान व्यक्ति सुख में बहुजन हिताय और दुख में वासना निवृत्ति। सुख और दुख का उपयोग कर लिया, सुख दुख से पार हो गया, मुझ में आ गया। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मता। ऐसा एक योगी अपने वेदांत धर्म में से सूफीवाद चला। फरुद्दीन अत्तार सूफी फकीर थे, संत। तुर्क और ईरान आपस में भिड़ गए थे। और वो फरुद्दीन अत्तार घूमते घामते वहां निकल पड़े। तो विरोधी फौजियों ने पकड़ लिया और झूठ मूठ में आरोप किया कि ये जासूस है। फांसी की सजा दे दो। देशवासियों ने कहा कि हमारे यहाँ के फकीर हैं, संत हैं। जवेरी ने कहा कि चाहिए तो इनको तोलकर हमारे यहाँ से हीरे जवाहरात ले लो। नहीं चाहिए। राजा ने कहा मेरा आधा राज्य ले लो। फरीदुद्दीन अत्तार पूछो, अगर आपको आधा राज्य से संतोष नहीं होता तो पूरा राज्य ले लो। अरे एक आदमी में आखिर क्या है? अरे बोले ये जगे हुए महापुरुष है, ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ है। बोले एक फकीर, एक संत के लिए, गुरु के लिए जितना इतना आदर रखने वाले देश से अब हम दुश्मनी क्यों मोल लें? अब हम गले लगते हैं। दोनों देशों का युद्ध विश्राम हो गया, क्योंकि राजे तो पैदा होते रहते हैं। ये मेरा राज, मेरा राज, ये तो राजे पैदा होते रहते। संत तो कभी कभी धरती पे आते, ऐसे संतों को, निर्दोष संतों को ये सरकार। महान सिकंदर आ रहा है, सब हट जाओ। जानबूझ के एक संत सकड़ी गली में लेट गए, बोले हम यहीं सोएंगे। बोले महान सिकंदर आ रहा, रास्ता खाली करना। बोलो मेरे पैरों के तरफ से निकल जाए। जाकर सिकंदर को कहा कि एक संत है बायोजीत, ऐसा बोलते हैं। आया तो आग बबूला, लेकिन संत को देखा, संत ने नजर डाली, ठंडक आ गई। तुम इतने खुश नजर आते हो, क्या कारण है? फौज नहीं है, राज्य का कोष नहीं है। डायोजनीस, तुम इतने खुश नजर आते हो, आप कौन हो? बोले मैं कौन हूं तो बताता हूं, लेकिन तू कौन है? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजय को निकला हूं। डायोजनीस ठाका मार के यहां से विश्व विजय, ऐसे तो कई पागल निकले विश्व को जीतने के लिए, लेकिन लड़ते लड़ते खजाना भरते भरते मर गए। विश्व पर विजय कैसे होता है? विजय तो अपने पर होता है, अपने ख्यालों पर विजय, अपनी नासमझी पर विजय, अपने अहम पर विजय। जो अपने पास है उस पर विजय होता है, दूसरों पर क्या विजय होगा? बोले बात तो सच्ची है तुम्हारी, दिल से लगती है, और तुम्हारी खुशी भी अद्भुत है। बिना सामग्री के इतने प्रसन्न, और तुम्हारी निगाहों से माहौल में लोगों को शांति और प्रसन्नता। आई लाइक सॉल एक्सपीरियंस। तू पसंद करता तो बैठ जा। बोले अभी जाने दो, विश्व विजय करके फिर आऊंगा। राजनीश ने कहा पागल हुए हो, विश्व विजय करके कोई लौटा है, विश्व उसको अपने में घोल मोल देके तबाह कर देता है। विश्व विजय नहीं हो सकता है, आत्म विजय करो। बोले बात तो सच्ची, लेकिन अभी जाने दो। बोले जाओ, वापस नहीं लौटोगे। नहीं लौटा, मर गया सिकंदर रास्ते में। ये व्यास पूर्णिमा समझाती है कि दुनिया की चीज़ों पर विजय मत करो, शत्रुओं पर विजय मत करो, अपनी नासमझी पर विजय कर लो समझदारी से। अपने मरने वाले शरीर को मैं मानने की बेवकूफ़ी पे विजय कर लो, सुख को सच्चा मानने की मूर्खता पर विजय कर लो, दुख को सच्चा मानने की बेवकूफ़ी पर विजय कर लो। अरे जो आता है जाता है वो सच्चा कैसे? सच्चा तो वो है जो आता भी नहीं, जाता भी नहीं, मरता भी नहीं, बिछड़ता भी नहीं, बेवफाई भी नहीं करता। वो तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा ही सत्य है। मरने के बाद भी तुम रहते हो, सवा दो घंटे के बाद अपने शब को देखता है वो जीव, तो चेतन से देखता है, जड़ से थोड़ी देखेगा। तो व्यास पूर्णिमा का ये दिव्य ज्ञान लोगों तक पहुँचे, इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने सम्मति दी। और हर बारह महीने साधक अपने अपने गुरु का दर्शन पूजन और जहाँ पहुँचाए उसे आगे की सूझबूझ का धन प्राप्त करे। अब 100, 200, 1000, 2000 हो तो शिष्य गुरुद्वार पर जाए, जब लाखों और करोड़ों होते हैं तो गुरुद्वार पर सब कैसे आ सकेंगे? तो गुरु भी फिर चलो चलो भैया, चार और पाँच तारीख हैदराबाद में कई लोग थे, 6 और 7 रायपुर में, इतनी भीड़ वहाँ के मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री, तीसरे मंत्री, चौथे और बाकी के लोग। मैंने कहा हमने संदेशा नहीं भेजा और आपको बुलाया नहीं, हमें परीक्षा लेनी थी कि आप अपने आप आते हो कि बुलावे पे आते हो। अपने आप आए हो रमन सिंह, तुमको शाबाश, रहो फिर, संभाले रखो गद्दी, हुई पक्की। ये महापुरुष भिक्षा तो मांग के खा लेंगे रोटी का टुकड़ा, लेकिन एक पलक में राज्य का दान कर सकते हैं। मच्छर से तो बच के निकलेंगे, सर्प विषीले को प्यार से पकड़ लेंगे, शेर को आज्ञाकारी पालक बना देंगे। ऐसे पुरुषों को बाहर से पहचानना सबके बश की बात नहीं है। नज़रों से वे निहाल हो जाते जो ब्रह्मज्ञानी की नज़रों में आ जाते। साईं ये लो, साईं ये लो, ये दो, ये लो, ये दो, ऐसा करके जो बरसती कृपा है उसको धकेल देते मूर्ख लोग। आशीर्वाद दो, साईं दया करो, साईं दया करो। अभी क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बीच आए, अपनी नज़र डाल रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? उज्जैन नाम सुना है तुमने, सांदीपनि आश्रम की जो जगह थी वहीं अपना आश्रम है। सांदीपनि जी का आश्रम बहुत विशाल था, समय के फेर से टुकड़े 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 अपना, बिल्कुल अभी सांदीपनि आश्रम का जो छोटा हिस्सा है उसकी बाउंड्री और अपनी बाउंड्री एक ही है। सांदीपनि कोई तेज तरार विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन उनके गुरुदेव जब संसार से जा रहे थे तो बेटे जो चाहिए ले लो, किसी ने खड़ाऊ मांग ली, गुरुजी आपका कलम हमें मिल जाए, गुरुजी आपका अंगोछा, आपका लेखनी, आपका किताब, जिसको जो रुचिकर था उन्होंने मांग लिया। लेकिन सांदीपनि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, टकुर टकुर कहूँ कहूँ गुरु जी को देखता रहे। गुरु जी ने कहा संदीपन तुझे जो कुछ चाहिए मांग ले। बोले गुरु जी कुछ नहीं, आपके दर्शन हो रहे, अब क्या मांगे? जिस गुरु ने अपने आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाई उनके दर्शन हो रहे, उनके दर्शन करते करते मैं तो खुशहाल निहाल हो रहा हूँ, अब ये चीज़ वो चीज़ क्या बचकानी चीज़ मांगूँ? गुरुजी खुश हुए, बेटे सांदीपक विद्यार्थियों में तो तू ढीला है, लेकिन गुरु के दर्शन में तू अव्वल नंबर का है, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और वो तेरा शिष्य बनेगा। जितना ईश्वर के नजीक होकर आप निर्णय करोगे उतना अच्छा होगा। अब आखिरी बात सुन लो, रात को सोते समय लोग कोई बीमारी लेके सोता है, कोई सेक्स की भावना लेकर पड़ता है, कोई कुछ लेके सोता है, तो जैसा लेकर सोते हैं वैसे ही उठते हैं फिर उन्हीं विचारों में। मैं तो कहूँगा मैं तुमको भगवान नारायण अब योग निद्रा में है, देव शनि एकादशी से आप भी योग निद्रा का फायदा लो। रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर, ये पंच भौतिक शरीर बिस्तर पे पड़ा है, मन बुद्धि अहंकार ये भी माया का है, माया के बिस्तर पे पड़ा है। मैं आत्मा परमात्मा का हूँ, अब मैं परमात्मा में विश्रांति पाऊंगा, मैं अब निद्रा नहीं करूँगा, भगवान नारायण और आत्मज्ञानी गुरु निद्रा करते ने ऐसे योग निद्रा करूँगा। ओम प्रभु जी ओम प्यारे। सोते समय ख्याल रखना तुम्हारा सिर पश्चिम के तरफ तो नहीं है, नहीं तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिराना तो नहीं है, अगर है तो बीमारी और अकाल मृत्यु का खतरा रहेगा। दक्षिण या तो पूर्व के तरफ सिराना हो, और दिन भर में अच्छे काम किए ईश्वर को अर्पण करो। गलती हो गई है तो हे प्रभु पाही माम, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। वो ज्ञान देंगे भगवान के, सुख भी सपना है दुख भी सपना है, अमीरी भी सपना है गरीबी भी सपना है, बीमारी भी सपना है स्वास्थ्य भी सपना है, सफलता भी संसार की सपना है विफलता भी सपना है। उसको सदा एक रस जो जानता है वो परमात्मा अपना है, वो परमात्मा अपना था है और रहेगा, जो कभी मरता नहीं कभी बिछड़ता नहीं कभी बेवफाई नहीं करता, और हजार हजार गलतियां करो फिर भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर में शयन करो। सत्यम शरणम गच्छामि, ईशम शरणम गच्छामि, ये ना बोलो संस्कृति तो, मैं सत्य स्वरूप ईश्वर में जा रहा हूँ, ईश्वर मेरे हैं, और वो ईश्वर का स्वाभाविक नाम है ओम। ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, हरि ओम। जो हर समय है तो आपका नाम हरि, हर जगह पर हो हर समय हो, ये तो चमड़े की दीवार से अंदर बाहर कल्पना करना पड़ता है, बाकी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि ओम 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 ओम, ऐसा चिंतन करते करते हृदय पर हाथ रखो, प्रभु जी मैं आपकी गोद में आ रहा हूँ, आप चैतन्य है आनंद है। हरि ओम ओम ओम, फिर श्वास अंदर जाए तो हरि, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो दो, श्वासो श्वास गिनते गिनते आप लेट जाओ, थोड़े दिन में योग निद्रा का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। 6 घंटे 5 घंटे नींद भी आ जाएगी और वो योग निद्रा में बदलेगी, तो आपकी जिंदगी ऐसी संवरेगी कि आपकी जिन पर नज़र पड़ेगी वे भी धर्मात्मा होने लगेंगे, श्रेष्ठ आत्मा होने लगेंगे। एक बड़े ऊंचे कोटि के संत थे, हनुमान जी उनको ले गए थे, उड़ान भराई थी, 9 दुर्गाएं भी उनके आगे आई थी, वो मेरे मित्र संत थे, श्री राम जी के भी उनको दर्शन हुए थे, राज्य अभिषेक कैसा हुआ था वो इच्छा की तो राम जी ने अपना राज्य अभिषेक का दृश्य भी उनको दिखाया। उस समय के हाथी भी बड़े बड़े थे और गेहूं के दाने भी चमेली बेर से बड़े बड़े, उस समय का राम राज्य के समय का सारा माहौल उन्होंने देखा था, और मनुष्य अभी जो देखते हैं 3.5 हाथ के, 14 हाथ का मनुष्य, वो मोहन जो दरों कहीं खोद काम मिलता है तो ईंट बड़ी चौड़ी चौड़ी मिलती है, क्योंकि मनुष्य इतने मोटे मोटे थे तो ईंट भी चौड़ी चौड़ी थी, अभी मनुष्य छोटे छोटे हुए तो ईंट भी इतनी होगी, कभी कभी पुरानी ईंटें बड़ी चौड़ी चौड़ी दिखती हैं, पुरातन विभाग वालों के यहाँ देखो तो सारा देखा। ऐसे लालजी महाराज मेरे मित्र संत थे, वो मर गए थे, सांप ने काटा था और रात भर पड़े रहे, डॉक्टर ने कहे तो मर गया है। उनकी माँ साध्वी थी, कपड़ा उड़ा दिया, दिया जलाकर बैठी रही, जप करती है। बोला अब सुबह हो गया बेटा, उठो। उठ के खड़ा हो गए। ऐसी जिनकी माँ थी वो मेरे मित्र संत थे, और मेरी माँ की माँ भी कुछ ऐसी थी, वो मर गई, शमशान में उठा के ले गए, वहाँ हिली और फिर पैदल चल के आए। पूछा क्या हुआ? बोले कुछ ऐसा नरक देखा मैंने। मैंने कहा मुझे नरक में क्यों लाए हो? तो बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई भूमल है ना। बोले भूमल भूमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले पापे है। पहलाज राय? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पंजुमल? नहीं पंजुमल, चकुमल। तो भाई बोल देने। बोले हम नहीं लेते भैया, तुम बोलते जाओ। बोलते बोलते हेमी भाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। बोले प्रेमचंद? बोले हाँ। यमराज ने डांटा के हे जमदूतो मूर्खो, पहले पुष्करना पातकी को लाना था, तो पुष्करना नाथ पुण्यात्मा को ले आए, मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी हेमीबाई पोहमल को लाना था, तो हेमीबाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ छोड़ के आओ। तो मेरी नानी से पूछा गया कि तुमने ऐसा कैसे कितना? बोले हमने सुना था सत्संग में, जिसने गुरु दीक्षा लिए हर ओमकार का जप किया उसे नरक नहीं होता है। नरक तो उन्हीं को होता है जो निगुरे हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, दुराचारी हैं। मैंने कोई दुराचार नहीं किया और मैंने गुरु का दर्शन किया है, गुरु की दीक्षा ली है, मुझे नरक में क्यों लाए? मैं तो अड़ गई। तो आपको भी कभी कोई जमदूत ले जाए और नरक देखे तो तुम भी अड़ जाना कि हमने बापू का सत्संग सुना है, हरे ओम 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 गुंजन किया है, हरे ओम ओम। इस ब्रह्मांड को लांग कर अनंत ब्रह्मांडीय सत्ता से हम जुड़े हुए हैं। हरे ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम ओम ओम। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। ब्रह्मज्ञानी गुरु का संग किया, यमराज सेवा करते हैं, उसका आदर करते हैं। करोड़ों करोड़ों तीर्थ कर लो, लेकिन सत्संग के आगे वो करोड़ों तीर्थ का फल भी नन्ना हो जाता है। सत्संग से वो फल मिलता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनकर उसमें टिक गया। तुम तो कई क्षण टिक गए और फिर व्यास पूर्णिमा के निमित्त टिके हो। अब काहे चिंता करित हो भैया? हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम।